नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर जारी हिंसा और आंदोलन को लेकर बुधवार को हुई सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने शिंदे सरकार के साथ एकजुटता दिखाई और आरक्षण देने के सरकार के प्रस्ताव पर समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर किया। बैठक में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, वरिष्ठ कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, शिवसेना नेता अनिल परब समेत अन्य नेता मौजूद हैं। इसके साथ ही मराठा आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक में प्रस्ताव पारित कर कार्यकर्ता मनोज जरांगे से अनिश्चितकालीन अनशन खत्म करने की अपील की गई। इससे पहले मराठावाड़ा के कई क्षेत्रों में आगजनी, तोड़फोड़ और सड़कों पर आंदोलन के चलते कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जारांगे पाटिल के अनशन पर बैठने के बाद से कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है और जगह जगह दूसरे समर्थक भी अनशन पर बैठ गए हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है। सीएम योगी प्रदेश की तिजारा विधानसभा में पहुंचे हैं, जहां वो बाबा बालकनाथ के लिए प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने अशोक गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सीएम योगी ने कहा कि राजस्थान सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और इस बार जनता उन्हें सबक सिखाएगी। इस दौरान उन्होंने इसराइल हमास युद्ध का जिक्र करते हुए भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के तिजारा में सभा को संबोधित करते हुए उदयपुर के कन्हैया लाल मर्डर मामले में भी बात की। सीएम योगी ने अशोक गहलोत सरकार पर विफलता का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी सरकार में भव्य राम मंदिर बन रहा है और ये मोदी जी के रहते संभव हो पाया है। सीएम योगी ने कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का जिक्र भी किया। सीएम योगी ने कहा, हमारी सरकार में भव्य राम मंदिर बन रहा है। हमारी सरकार ने कश्मीर से धारा 370 हटाया। कांग्रेस सरकार अयोध्या का समाधान नहीं चाहती थी, ये मोदी जी के रहते संभव हो पाया है। पीएम मोदी ने कश्मीर से 370 हटाकर आतंकवाद को समाप्त कर दिया है। जम्मू कश्मीर के डोडा ज़िले में बुधवार को 3.2 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया, लेकिन इसमें जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है, अधिकारियों ने यह जानकारी दी। भूकंप दोपहर 12:22 पर आया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि ये डोडा में ज़मीन के नीचे 5 किलोमीटर की गहराई पर केंद्रित था। प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू कौशल विकास निगम घोटाला मामले में जमानत पर रिहा होने के बाद बुधवार तड़के उंदावली स्थित अपने घर पहुंचे। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजा महेंद्रवरम जेल से 13 घंटे की लंबी यात्रा के बाद सुबह लगभग 6 बजे अपने घर पहुंचे, जहां परिवार के सदस्यों और पार्टी समर्थकों ने उनका स्वागत किया। तेदेपा प्रमुख ने बाद में पत्नी एन भुवनेश्वरी और रिश्तेदारों के साथ प्रार्थना में भाग लिया। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार को स्वास्थ्य आधार पर नायडू को 4 सप्ताह की अवधि के लिए अंतरिम जमानत दी थी। नायडू का काफिला मंगलवार शाम करीब 5 बजे पूर्वी गोदावरी जिले के राजा महेंद्रवरम से निकला। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में बुधवार को धुंध छाई रही और रात के दौरान तापमान में गिरावट और हवा नहीं चलने के कारण राजधानी की वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुँच गई। शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक सुबह 10 बजे 372 दर्ज किया गया, जो इस मौसम में अब तक का सबसे अधिक है। 24 घंटे की अवधि का मंगलवार को औसत AQI 359, सोमवार को 347, रविवार को 325, शनिवार को 304 और शुक्रवार को 261 दर्ज किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद को धन के कथित दुरुपयोग को लेकर उनके खिलाफ दायर मामले में गुजरात पुलिस के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने न्यायालय को बताया कि दोनों जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद न्यायमूर्ति SK कौल की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने आदेश पारित किया। इस मामले में दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली गुजरात सरकार की एक याचिका को निस्तारित करते हुए पीठ ने कहा, अभी तक आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है। ASG का मानना है कि सहयोग की कमी का एक तत्व है, जैसा है वैसा रहने दें, प्रतिवादी आवश्यकता पड़ने पर जांच में सहयोग करेंगे। पीठ में न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया और न्यायमूर्ति PK मिश्रा भी शामिल हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा ने रिश्वत लेकर सवाल पूछने के आरोप के मामले में लोकसभा की आचार समिति के समक्ष पेश होने से एक दिन पहले बुधवार को एक पत्र साझा किया, जो उन्होंने इस समिति के प्रमुख विनोद कुमार सोनकर को लिखा था। मोइत्रा के इस पत्र पर 31 अक्टूबर की तिथि है। इस पत्र को साझा करते हुए उन्होंने X पर पोस्ट किया। समिति ने मुझे समन किए जाने की जानकारी मीडिया को देना उचित समझा, इसलिए मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण है कि मैं भी कल अपनी सुनवाई से पहले समिति को लिखा अपना पत्र जारी करूं। पत्र में मोइत्रा ने कहा कि वो 2 नवंबर को समिति के सामने पेश होंगी और अपने खिलाफ की गई शिकायत का पर्दाफाश कर देंगी। उन्होंने पत्र में कहा कि आपराधिक मामलों में संसदीय समितियों के पास अधिकार क्षेत्र का अभाव है और ऐसे मामलों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को शामिल करने की ज़रूरत है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।